भारत के तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन इम्फान आ चुका है, क्या रफ्तार है तूफान की, कितना खतरनाक हो सकता है ये?
तो साइक्लोन इम्फान एक समर साइक्लोन है और इसकी लैंडफॉल प्रोसेस लगभग 2:30 बजे से शुरू हो चुकी है और ये माना जाता है कि अभी लगभग 4 से 8 घंटा ये कंटिन्यू करेगा। इट्स एन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन और इसकी विंड स्पीड माना जा रहा है 155 to 165 किलोमीटर पर आवर है। ये गस्टिंग अप टू 185 किलोमीटर हो सकती है और बीच में कई एक्सपर्ट की ये भी राय है कि ये साइक्लोन बीच में अपना थोड़ा सा पाथ भी चेंज कर चुके हैं और जिसके कारण इसकी इम्पैक्ट कलकत्ता शहर में बहुत भारी हो सकती है, काफी खाई क्षति की संभावना भी है। और प्रेजेंटली कलकत्ता में जो विंड स्पीड है इट इज नियर अबाउट 130 किलोमीटर पर आवर। तो अभी तक ये माना जा रहा है कि ये लैंडफॉल 4 से 5 घंटा तक कंटिन्यू करेगी और कोस्टल एरिया जो है वेस्ट बंगाल की वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है और यूनिसेफ की जो आंकड़े है वो बेसिकली ये जो एस्टिमेशन है वो मोर देन 50 मिलियन पीपल अफेक्टेड हो सकती है इन दिस 7 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल की।
तो ये कौन से इलाके हैं जहाँ अलर्ट जारी हुआ है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं?
तो इनिशियली साइक्लोन की जो IMD जो अलर्ट थी वो था ओडिशा और वेस्ट बंगाल दोनों स्टेट में साइक्लोन की इम्पैक्ट होगी, बट अभी जो देखा जा रहा है कि ओडिशा में इतनी इम्पैक्ट नहीं हुई है एक्सेप्ट बहुत हैवी रेनफॉल के अलावा, बट वेस्ट बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है और जो है ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ चब्बीस परगना, हावड़ा, हुगली एंड कोलकाता। ये सारे डिस्ट्रिक्ट, इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है बट पूरी राज्य में भारी वर्षा हो रही है और कलकत्ता सिटी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना है बिकॉज साइक्लोन की पास कलकत्ता ईस्टर्न कलकत्ता से जा रही है।
इससे निपटने की क्या तैयारियां हैं? संयुक्त राष्ट्र किस तरह इस आपदा के समय सरकार के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन का काम कर रहा है?
तो संयुक्त राष्ट्र नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बहुत क्लोजली काम करते हैं ऑन आपदा तैयारियां एंड आपदा प्रबंधन के ऊपर। अभी तक जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही विभिन्न प्रकार के साधन किए हुए हैं, जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, 19 टीम्स ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में पहुंच गए हैं जिसमें से 15 टीम्स एक्टिवली इन्वॉल्व है रिस्पॉन्स के लिए और 4 टीम स्टैंड बाई मोड पे है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यूनिसेफ काफी क्लोजली गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ काम कर रहे हैं, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ये माना जाता है कि अगर सरकार से रिक्वेस्ट किया जाए तो यूनाइटेड नेशन सरकार को साइक्लोन रिस्क रिकवरी और साइक्लोन रिस्पॉन्स के भी सपोर्ट करेंगे।
तो जो हाई इम्पैक्ट एरियाज हैं वहां से कितने लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है, शेल्टर होम्स में किस तरह के इंतजाम हैं?
अभी तक पश्चिम बंगाल में लगभग 330,000 पीपल को इवैक्यूएट किया गया है और कई सारे बिकॉज तो कोविड के लिए सरकार के लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज भी है कि पहले जो शेल्टर में वो 500 लोगों को रख सकते थे लेकिन अभी साइक्लोन बिकॉज ऑफ कोविड वहां पे 1/3 कैपेसिटी में ही लोगों को रखा जा सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कई सारे स्कूल को भी आइडेंटिफाई किया है। बट ये सारे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से लोगों को जो वल्नरेबल एरियाज में थे उनको इवैक्यूएट किया गया है। अभी तक बहुत ज्यादा डेथ की खबर नहीं आई है, 5 to 6 डेथ रिपोर्टेड है बट ऑफकोर्स सारे डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है जो बाद में ही हमारे पास आएगा। साइक्लोन शेल्टर्स में उन्होंने उनके लिए बड़े कोविड एक बहुत बड़ी चैलेंज है तो उसके प्रिपेयरनेस के लिए उन्होंने काफी तक जागरूकता कर रहे हैं, वॉशिंग पॉइंट्स के इंतजाम कर रहे हैं, वाटर स्टोव की फैसिलिटीज रख रहे हैं। मास्क अभी तक लोगों के पास उतना नहीं है, वो एक बहुत बड़ी चैलेंज है बट सरकार एनजीओस के साथ एनजीओस के सपोर्ट लेके चैलेंज को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जैसा कि आपने कहा कि कोविड का समय है, पूरा देश कोविड संकट से जूझ रहा है और ऐसे में ये दोहरी चुनौती बन गई है, शेल्टर होम्स हैं वहाँ पर इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स में एहतियात किस तरह बढ़ते जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए और साफ सफाई भी पूरी तरह रखी जाए, क्या ये संभव हो पा रहा है इन हालात में?
अभी तक हमारे पास जितनी खबर है एनजीओ से और सरकार के रिपोर्ट से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, चैलेंजेस हैं बिकॉज वाटर एक चैलेंज है, वाटर वॉशिंग पॉइंट लगाना, सोप लगवाना, बट लेकिन उन्होंने सरकार की तरफ से वो लोग कोविड प्रिपेयरनेस के लिए जागरूक कर रहे हैं कम्युनिटी को एनजीओ की हेल्प ले रहे हैं और जहां तक संभव है कोशिश कर रहे हैं, पर चैलेंजेस है ग्राउंड पे, तो चैलेंजेस है पर्टिकुलरली सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग चैलेंजेस है वहाँ पे वो हैंड वॉशिंग और मास्क के यूज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक शेल्टर होम में बहुत ज्यादा लोगों को ना रखा जाए। बट गांव में ये भी परिस्थिति बहुत ही संकटजनक है।
तो ये जो तटीय इलाके पहले से ही समुद्री आपदाओं के प्रति संवेदनशील माने जाते हैं, हमने पहले भी कई साइक्लोन और उनसे हुए तबाही के मंजर को देखा है, पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदला है कि हालात बेहतर हो सकें और जानो माल का नुकसान ना हो?
अगर हम भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट की क्रोनोलॉजी देखें या हिस्ट्री को देखें, तो ये सारे राज्य उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे साइक्लोन प्रिपेयरनेस पे बहुत काम हो चुके हैं पहले। और जब तक अगर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को भी मान के चलूँ जो 2005 में इनेक्ट किया गया हुआ था, तो 2005 से 2020 के अंदर बहुत आपदा तैयारी के ऊपर बहुत काम हो चुकी है। और अगर हम कम्युनिटी प्रिपेयरनेस की बात करें तो सरकार ने कम्युनिटी प्रिपेयरनेस, कम्युनिटी अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम किया है और इसीलिए शायद हम देखेंगे कि अभी साइक्लोन या डिजास्टर रिलेटेड डेथ बहुत कम हो गया है इंडिया में। अगर हम सुपर साइक्लोन को ले लेते हैं जो उड़ीसा में आया था 1999 में, वहां पे मोर देन 15,000 पीपल डाइड। बट अगर हम साइक्लोन फानी को देखें जो लास्ट ईयर आए थे, ओनली 64 पीपल डाइड। तो ये जो जीरो मोर्टेलिटी की कॉन्सेप्ट है उस पे शायद हम लोग काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं, बिकॉज अभी लाइफ लॉस काफी कम हो चुके हैं। बट तो कम्युनिटी प्रिपेयरनेस ज्यादा हो गई है, सरकार में जागरूकता बढ़ गए हैं, कम्युनिटी की जागरूकता बढ़ गए हैं, सिविल सोसाइटी के साथ बहुत सारे काम हो चुके हैं, प्रिपेयरनेस प्लान बनाया गया है पंचायत लेवल तक। बट ये बात है, ये एक बहुत बड़ी गैप जो है वो है कि हम इकोनॉमिक लॉस को नहीं कम कर पा रहे हैं। तो जितनी भी डिजास्टर हो रही है उसमें लाइफ लॉस तो कम हो रही है लेकिन इकोनॉमिक लॉस बहुत बढ़ गई है। तो इकोनॉमिक लॉस को कम करने के लिए जो फोकस होने चाहिए, जो काम होने चाहिए, वो शायद अभी तक उस लेवल पे नहीं हुआ है ताकि हमारी इकोनॉमिक लॉस कम हो।
तो अगले कुछ घंटों में ये साइक्लोन एम्फॉन किस तरह आगे बढ़ेगा, इस बारे में क्या जानकारी है?
IMD रिपोर्ट को माना जाए तो उनका ये कहना है कि साइक्लोन अम्फान अभी कलकत्ता और सराउंडिंग एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ साउथ चौबीस परगना, ईस्ट मिदनापुर एंड वेस्ट मिदनापुर, उस एरिया में 4 to 5 आवर्स तक एग्जिस्ट करेंगे और उसके बाद स्लोली बांग्लादेश की तरफ मूव करेंगे। बट साइक्लोन की पाथ ऑसिलेट हो रही है तो एग्जैक्ट ट्रैक अभी तक पता नहीं है, बट ये आशा किया जा रहा है कि धीरे वो कल सुबह तक बांग्लादेश की तरफ चले जाएगा।
बांग्लादेश की तरफ जब वो जाएगा तो क्या उसमें उसकी स्पीड में, उसकी गति में कुछ कमी आने की भी उम्मीद है?
उसकी गति आने, हाँ, बिकॉज ये माना जा रहा है कि एंटायर लैंडफॉल जो है वो यही 5 से 6 घंटे में खत्म हो जाएगी और शायद उसकी स्पीड जब वो बांग्लादेश पहुंचेगी उसकी स्पीड कम होता जाएगा। बट एट द सेम टाइम वो ऐसे अभी बताया नहीं जा सकता है बिकॉज साइक्लोन की जो प्रेशर है वो क्वाइट हाई है। तो अभी तक IMD की कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं है कि बांग्लादेश कितने बजे बांग्लादेश की तरफ एंटर करेंगे, बट ये एक्सपेक्टेड है कि शायद कल सुबह तक वो बांग्लादेश की तरफ चले जाएंगे और स्पीड भी, साइक्लोन भी इन द प्रोसेस वीक हो जाएगी।